ओम शांति, ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आपके ये मॉर्निंग सेशंस जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है सहज राजयोग, उससे संबंधित हैं। और जब हम योग शब्द कहते हैं तो योग हमारी भारत की प्राचीन विद्या है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि योग का अभ्यास करते रहे और इस योग के लाभ भी वो अपने जीवन में अनुभव करते थे। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान में भी योग लोकप्रिय हो रहा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी आज योग लोकप्रिय हो रहा है, और विशेषकर स्वास्थ्य के संदर्भ में, क्योंकि योग हमें स्वस्थ बनाता है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं तो मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसकी शक्तियाँ हम स्वयं में अनुभव करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, हमारे संबंध अच्छे होने लगते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है। ऐसे अनेक लाभ जब हम प्रतिदिन राज्यों का अभ्यास करते हैं तो हम अनुभव करते हैं, और विशेष हमारा मन शांत, संतुलित और स्थिर होता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी जब जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं तो उन उतार चढ़ावों में भी हम अपने मन को शांत रख पाते हैं, स्थिर रख पाते हैं। जैसे कहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये स्थितियाँ हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल भी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी हमारी निंदा भी होती है। लेकिन एक योगी हर स्थिति में समान रहता है, इसलिए उसको स्थिर चित कहते हैं। ऐसे नहीं सुख में, सफलता में, प्रशंसा में हम अहंकार में आ जाएं, और दुख में, असफलता में हम बहुत निराश, हताश हो जाएं, तो ये जीवन में परिवर्तन हम महसूस करते हैं। आज योग केवल योगासन प्राणायाम को ही समझ लिया गया है ना। हम 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये स्वीकार किया गया यूएन के द्वारा, और काफी वर्षों से ये योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन योग केवल योगासन प्राणायाम नहीं है। योगासन प्राणायाम तो व्यायाम है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं है लेकिन मन से भी है। आज हमारी जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि हम तनाव युक्त जीवन जीते हैं, और मेडिकल साइंस कहता है कि 70% से अधिक बीमारियां आज साइकोसोमैटिक बीमारियां, जिन्हें हम मनोकायिक रोग या लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, तो उसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं उनका संबंध मनोकायिक स्थिति से है। तो पहले हमारे मन का स्वस्थ होना आवश्यक है, हमारा मन तनाव मुक्त हो। पहले कहते थे हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, अब कहेंगे हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी, कि अगर हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो मन भी पहले हमारा स्वस्थ होना चाहिए, और योग हमारे मन को स्वस्थ बनाता है। तो जब हम योग शब्द कहते हैं तो ये संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है संबंध या मिलन। ये युज धातु से आया है, तो संबंध या मिलन के अर्थ में योग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम वियोग कहते हैं, वियोग माना अलग हो जाना। सहयोग कहते हैं, तो दो मिलकर जब काम करते हैं तो उसे हम सहयोग कहते हैं। अंक गणित में भी योग माना दो अंकों को जोड़ना, तो जहां जुड़ना मिलना है उसके अर्थ में ही हम योग का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये योग कई स्तरों पर हो सकता है, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर। तो जब हम भौतिक स्तर पर योग कहते हैं तो जब दो वस्तुओं को हम मिलाते हैं, मानो हमने दही में चीनी मिलाई तो दही मीठा हो जाता है, ये भी एक प्रकार का योग है। साइंस में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं, पानी बनता है, तो दो तत्वों को मिलाया तो पानी यौगिक है, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो इस तरह से वो भी एक भौतिक योग है। आयुर्वेद में अनेक दवाओं का मिश्रण, उसे योग कहते हैं। मानसिक योग हम किसे कहेंगे? मन जहां लगा हुआ है, मन जहां जुड़ा हुआ है, तो मन ज्यादातर तीन जगहों पर होता है। या तो हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, या किसी वस्तु की इच्छा या प्रयास कर रहे हैं, या फिर कर्म में हमारा मन लगा रहता है। तो इस स्तर पर हम सभी योगी हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं लगा हुआ ही है। या तो हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, या कोई वस्तु के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, उसमें हमारी बुद्धि लगी रहती है, और या फिर कर्म में तो हमारा मन हम घंटों लगाए रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर योग किसे कहेंगे? जब मन व्यक्ति वस्तु कर्म से निकलकर ईश्वर में लग जाता है, उसे हम राज योग कहते हैं। तो राज शब्द इसमें श्रेष्ठता का प्रतीक है, यानी ये सर्वश्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति है। तो उसके साथ हमारे मन का संबंध या उसके साथ हमारा मिलन, वो सर्वश्रेष्ठ संबंध है, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध है, और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध है। अब ऐसे तो संसार में हमारे संबंध हैं, लेकिन उन्हें हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो परिवर्तनशील हैं। व्यक्ति की मनस्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, तो हमारे संबंध भी बदलते रहते हैं। हम सब अनुभवी अपने जीवन में, जो व्यक्ति हमें सुख देता है वही हमें कभी दुख भी देता है, जो हमें प्रेम करता है वही कभी हमसे नफरत भी करता है, जो हमारा सम्मान करता है वही कभी हमारा, परिस्थिति बदल गई तो वो हमारा अपमान भी कर सकता है। लेकिन ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है, क्योंकि वो सदा ही प्यार का सागर है, वो सदा ही शांति का सागर है, वो सदा ही सुख का दाता है, वो कभी नहीं बदलता। तो परमात्मा से हमेशा हमें सुख शांति और वो प्यार का ही अनुभव होता है। और इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो हम किसको याद कर रहे होते हैं? किसको याद कर रहे होते हैं? भगवान को ही याद करते हैं। सब संबंध होते हुए भी हमें भगवान याद आता है, और इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम याद तो करते हैं ईश्वर को, लेकिन हमारी शिकायत रहती है कि मन भगवान की याद में लगता नहीं, मन भटक जाता है। तो क्यों नहीं लगता हमारा मन? क्योंकि हमें ईश्वर का सत्य परिचय नहीं है। हम उसे जो भी याद करते हैं वो परंपरा से जो चला आ रहा है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वही हम करते हैं। जिस व्यक्ति से हम परिचित नहीं उसको हम याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम अपने जीवन में उन्हीं को याद करते हैं जिनसे हम परिचित ही नहीं, जिनसे हम संबंध में हैं, और उनकी याद हमें स्वतः ही आती है। और परमात्मा से हमारा परिचय भी नहीं है, और इसलिए उनसे हमारा वो समीप संबंध भी नहीं है, इसीलिए हमें ईश्वर की याद करने में मुश्किल होता है। तो राजयोग, क्योंकि ये आत्मा का परमात्मा से संबंध है, तो हमें परमात्मा का भी परिचय और साथ साथ स्वयं का भी, आत्मा का भी परिचय, हमें ये दोनों ही आवश्यक है। आत्मा साधक है और परमात्मा साध्य है, और राज्य वो साधना है जिसके द्वारा हम ये संबंध अनुभव करते हैं। तो अगर हम स्वयं के विषय में कहें तो वहां भी हमें अज्ञान है, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा नो दाई सेल्फ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी नहीं जानते, इसीलिए ये बात कही गई कि अपने आप को जानो। तो कईयों को ये प्रश्न भी उठता है कि क्या हमारा ये भौतिक अस्तित्व ही है या इससे परे भी हमारा कोई अस्तित्व है। सामान्यतः कोई हमसे पूछता है तो हम क्या कहते हैं, कोई हमारा परिचय पूछता है। स्वामी विवेकानंद पहली बार अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास, जब वो नरेंद्र थे, तो उन्होंने द्वार खटखटाया, गुरु अंदर थे, तो अंदर से ही उन्होंने पूछा कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो जिज्ञासा, उनके उत्तर से ही वो समझ गए कि जिस शिष्य की मुझे तलाश थी अब वो मेरे द्वार पर आ चुका है। तो कईयों को ये जिज्ञासा होती है, लेकिन नॉर्मली हम अपने लिए समझते हैं या परिचय देते हैं, मेरा नाम ये है, हम ये व्यवसाय करते हैं या जो भी हम करते हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, जो भी हमारी कार्य हैं वो हम परिचय देते हैं, और या फिर हमारी जो भी उपलब्धियां हमने जीवन में हासिल की हैं वो भी हम कहते हैं। लेकिन इस संसार में जब हमारा जन्म हुआ तब तो हमारा नाम नहीं था, नाम तो कुछ दिनों के बाद रखा गया, तभी भी तो हम थे। जो भी व्यवसाय या जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो वर्षों बाद हम करना शुरू करते हैं, उसके पहले भी तो हम हैं। हमारी उपलब्धियां भी हम काफी वर्षों के बाद हासिल करते हैं, तो फिर कौन है? तो ये हमारा सांसारिक परिचय है जो हमारे कार्यों पर, जिसे हम ह्यूमन डूइंग कह सकते हैं, ज्यादातर हम जो करते हैं उसके आधार पर अपना परिचय देते हैं। लेकिन हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते, हमारा अंतर जगत भी है, और जब हम अंतर जगत की ओर जाते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं, स्मृतियां, वृत्तियां, ये हमारा अंतर जगत है, इसे हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, और भी नाम देते हैं, आत्मा, सोल, रूह, प्राण, स्पिरिट, कॉन्शियंस, ये हमारी जो चेतना है वो सूक्ष्म है, और ये ही शरीर को जीवन देने वाली शक्ति है। जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी है, हमें दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म माना हमें दिखाई नहीं देती, हमारी नेत्रों की क्षमता से परे है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, तो वो नहीं दिखती है, लेकिन ये लैपटॉप चल रहा है, माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, सब कार्य इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कितनी भी कोशिश कर लें ना तो ये माइक चल सकता है ना पंखा चल सकता है। तो ऐसे ही आत्मा जो जीवन शक्ति है, प्राण ऊर्जा है इस शरीर की, वो जब तक इस शरीर में है तब तक सब अंग अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे ये सब साधन कार्य कर रहे हैं, और जिस घड़ी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है वही शरीर के सभी अंग हैं, वही मस्तिष्क सोचना बंद कर देता है, आंखें खुली होंगी तो भी देखते नहीं, हार्ट है लेकिन अब पंप नहीं कर रहा, फेफड़े हैं लेकिन अब सांस नहीं ले रहे, और उसको हम क्या कहते हैं, मृत्यु। और फिर कई बार हम कहते हैं वो चला गया, तो कौन चला गया, शरीर तो यही है, कौन चला गया? फिर कहते हैं इनकी शांति के लिए हम प्रेयर करते हैं, तो किसको शांति चाहिए, शरीर तो शांति है ना, किसको शांति चाहिए, किसको शांति चाहिए, आत्मा को। तो हम ये तो समझते हैं कि केवल शरीर ही हमारा अस्तित्व नहीं है, शरीर में जो चेतना आत्मा है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और हम इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ह्यूमन शब्द है वो ह्यूमस से बना है। ह्यूमस माना सॉइल या मिट्टी, इसलिए हम कहते हैं ये माटी का तन है, यानी प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये पांच तत्व जो है वो इस शरीर को बनाते हैं। ये हड्डी मांस का पुतला है, ये जड़ है, लेकिन जब उसमें आत्मा या कॉन्शियसनेस आती है तब ह्यूमन बीइंग है, वो जीवात्मा है, मनुष्य है। तो मनुष्य में आत्मा और शरीर दोनों हैं, तब वो जीवन है। जैसे हम कहेंगे कि सर्जन है, वो तब ऑपरेट कर सकता है जब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कितना भी एक्सपर्ट सर्जन हो लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, पर सर्जन ही नहीं है तो भी बेकार है, है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, माना बिना एक दो के वो बेकार है। ऐसे ही शरीर आत्मा के बिना बेकार है, आत्मा शरीर के बिना बेकार है। आत्मा तभी अभिव्यक्त कर सकती है अपने आप को जो वह शरीर में है, और शरीर में भी जीवन तब है जब आत्मा है। और आत्मा जो है वो अचर, अमर, अविनाशी शक्ति है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी है। इसीलिए इसकी बैटरी डाउन हो गई है लैपटॉप की। तो आत्मा जो है वो एनर्जी है, इसीलिए साइंस भी कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। तो आत्मा भी न जन्म ले, आत्मा भी सदा ही है, अनादि है। जैसे गीता में भी कहा नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है। और आत्मा ही ये शरीर में जब आत्मा है तो जैसे कहा कि सभी अंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो सभी अंगों को मिलाकर के हम शरीर कहते हैं। केवल एक अंग शरीर नहीं है, केवल मस्तिष्क शरीर नहीं है, केवल हृदय शरीर नहीं है, लेकिन सब अंग मिलकर कार्य कर रहे हैं तब वो शरीर है। ऐसे ही आत्मा के भी तीन अंग हैं। वो तीन अंग हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की विचार शक्ति है, कल्पना शक्ति है, इच्छा शक्ति है। बुद्धि निर्णय शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, विश्लेषण करने की शक्ति है, तो ये परखने की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है। और संस्कार यानी जो हमारा व्यक्तित्व है, जो भी हमारे स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, आदतें हैं, उन्हें हम संस्कार कहते हैं। तो ये आत्मा के तीन अंग हैं। और उसमें सबसे जो मुख्य शक्ति है आत्मा की, वो मन की शक्ति है। मन की शक्ति को कहते हैं संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर व्यक्ति अपने मन की शक्ति का सदुपयोग करना सीख जाता है तो वो जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है। यदि मनोबल ऊंचा है तो विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लेकिन मन बहुत तीव्र गति वाला है, तीव्र गति वाला है माना एक सेकंड में हमारा मन कहां से कहां होता है। अभी जैसे हम शरीर से यहां बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि मन से भी हम यहां बैठे हों। कई बार हम हॉल से बाहर चले गए होंगे, हमारा मन हम जहां से आए वहां भी पहुंचा होगा, फिर हम वापस आ गए। कितना समय लगता है मन को ट्रेवल करने में, तो हम देखते हैं कितनी गति, प्रकाश की गति से भी तेज गति वाला जैसे हमारा मन है। और मन को समय स्थान व्यक्ति का कोई बंधन नहीं, कोई भी समय में जा सकता है हमारा मन। हम अपने बचपन की बातों को याद कर सकते हैं, हमारे भविष्य की कल्पनाएं कर सकते हैं हम। हमारे स्थान के लिए, अब मैं कहूं घर, कितना समय लगा घर पहुंचने में, तो किसी भी स्थान पर मन पहुंच सकता है। कोई अमेरिका गया, यहां बैठे बैठे एक सेकंड में कोई अमेरिका की बात है तो हम मन से वहां पहुंच जाएंगे। तो स्थान का भी बंधन नहीं, कोई व्यक्ति को हम कभी भी याद कर सकते हैं। और मन के लिए कहा, एज यू थिंक सो यू बिकम, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, अगर हमारे विचार साधारण हैं तो कर्म भी साधारण होंगे, अगर हमारे विचार बुरे हैं तो कर्म भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि हर कर्म का बीज एक विचार है। बिना विचार किए हम कोई कर्म अपने जीवन में नहीं करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में देखा गया कि हम एक मिनट में 25 से 30 विचार करते हैं और हम सारे दिन में 25,000 से 30,000 तक विचार करते हैं। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है, 50,000 तक विचार जो हैं वो हम करते हैं सारे दिन में जब हम टेंशन में होते हैं। और इनकी क्वालिटी चार श्रेणी में हम करते हैं, सारे दिन में हम चार प्रकार से सोचते रहते हैं, नेसेसरी थॉट्स आवश्यक विचार, वेस्ट थॉट्स नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स। 70% जो हमारे विचार होते हैं वो आवश्यक विचार होते हैं, क्योंकि जैसे कहा बिना सोचे हम कोई कर्म नहीं करते। तो फिर जो भी काम हमें सारे दिन में करना है, अब हम जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो भी काम है उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं, और जो भी हमें जिससे मिलना है, यहाँ जाना है, वो सब, तो 70% सारे दिन हमारी थॉट एनर्जी नेसेसरी थॉट्स में रहती है। दूसरे प्रकार के विचार हैं वेस्ट थॉट्स, क्योंकि हम सारा समय काम नहीं कर रहे, कुछ समय हम फुर्सत में भी होते हैं लेकिन मन फुर्सत में नहीं होता है, मन फुर्सत में नहीं होता है तो हम सोच रहे हैं, खाली बैठे हैं तो भी मन तो चल ही रहा है, तब मन क्या सोचता है, बीती हुई बातें, ये हुआ, ऐसे क्यों हुआ, इसने ऐसा बोला, ऐसा क्यों किया। तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, अगर हम उसे सोचते हैं तो हम अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवा रहे। कई बार हम इतना ज्यादा पास्ट को सोचते हैं, जो घटनाएं हो चुकी, कि उस समय जो दुख था हम वर्तमान में भी उसको अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं पास्ट इज पास्ट, लर्न ए लेसन फ्रॉम पास्ट। लेकिन बार बार सोचने से हम राई को पहाड़ बनाते हैं, उस बात को हम और बढ़ाते जाते हैं। और कई भविष्य की कल्पनाएं, जैसे कहा भविष्य की चिंता करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, तो ये सब क्या है, ये भी टाइम वेस्ट करना एनर्जी, क्योंकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं, वो तो वर्तमान पर निर्भर है। इसलिए कहते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। रहने दो, ऐसे ही कर लेंगे। प्रेजेंट इज गिफ्ट, तो वो गिफ्ट की तरह है, तो हमें प्रेजेंट में रहना, ये जीवन जीने की कला है। और तीसरे प्रकार के जो विचार होते हैं वो हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स यानी बुरे विचार, कुविचार। अब ये भी मन में आते हैं लेकिन 5%, सारे दिन में हम 5% ही बुरे विचारों में जाते होंगे। वो कौन से विचार होते हैं, जो विकारों के वश मन में चलते हैं, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव या निराशा, भय, तनाव, जैसे बताया। तो जब भी इन विचारों में मन होता है तब हम अशांत हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मन की शक्ति को कई गुना नष्ट करते हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो उसके बाद जैसे कहा, मन अशांत होता है, दुखी हो जाता है, मानो हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। कितनी देर हम गुस्सा करते हैं, कितनी देर हम करते हैं? कोई सारा दिन तो गुस्सा नहीं कर सकता। सारा दिन शांत रह सकता है ना? तो गुस्सा हम 5 मिनट करते होंगे मानो। 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। व्यक्ति 2 मिनट गुस्सा करता है, लेकिन उसका प्रभाव, हम गुस्से में ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। फिर उसका असर हमारे संबंधों पर आ जाता है। संबंधों में प्रेम खत्म होने लगता है, कई बार संबंध टूट भी जाते हैं। तो हमने 2 मिनट गुस्सा किया, उसका रिजल्ट घंटों तक हमारा मन अशांत रहेगा, कोई काम में हम मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, है ना? जो ये पूरे स्टडीज हैं कि करीब 6 घंटे तक हमारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रह पाती जब हम गुस्सा करते हैं। तो थोड़े समय के गुस्सा और प्रभाव कई बार जीवन भर तक, आप संबंध टूट गया तो सारी जिंदगी पर उसका प्रभाव आ गया। तो ऐसे ही कोई भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में आती है वो दुख और शांति टेंशन ही लेकर के आती है। और फिर हम पॉजिटिव भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव नहीं सोचते, अच्छे विचार भी करते हैं लेकिन कम। जैसे नेगेटिव कम है लेकिन प्रभाव ज्यादा है, ऐसे ही पॉजिटिव भी हम कम करते हैं। पॉजिटिव विचार कौन से होते हैं? पॉजिटिव विचार होते हैं आशा, उत्साह, सफलता के विचार, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्नेह, सहयोग देना, किसी के प्रति सेवा भाव, दया, करुणा, क्षमा के विचार, ये सब पॉजिटिविटी है। और जब हम इन भावनाओं में होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, शक्तिशाली होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है जब हम पॉजिटिव होते हैं। तो हम चाहते तो हैं कि हम पॉजिटिव रहें लेकिन नहीं रह पाते, क्योंकि मन पर व्यक्तियों और परिस्थितियों का प्रभाव होता है। कोई ना कोई व्यक्ति हमारी मनस्थिति को प्रभावित करता है, यह परिस्थिति भी हमारे मन के विचारों को प्रभावित करती है। यानी हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, परिस्थितियां हमारे मन को चलाती हैं। जिस प्रकार के व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं उसी तरह से मन में विचार चलने लगते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति जीवन में पैदा होती है, कई बार दुख देने वाली होती है तो ऐसे ही विचार करते हैं। कोई व्यक्ति हमको डिस्टर्ब करने वाला होता है तो वैसे ही विचारेंगे ना। कहते हैं हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है, वो चाहे तो हमें खुश कर दे, चाहे तो हमें दुखी कर दे। तो हम मास्टर ऑफ सिचुएशंस नहीं है, हम स्लेव ऑफ सिचुएशंस हैं। इसलिए सारे दिन में हमारे मूड बदलते रहते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो जैसे हम कहते हैं जंगल उगाए नहीं जाते, जंगल उग जाते हैं, लेकिन फूलों का बगीचा लगाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के फूलों के बगीचे नहीं होते। तो ऐसे ही हमारे मन में कोई भी विचार चलते रहते हैं, लेकिन अगर हमें मन को सुमन बनाना है, श्रेष्ठ मन बनाना है, मन में वो आशावादी सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार चले, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अपने मन को हमें समय देना होगा। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम समय देते हैं, हम भोजन का ध्यान रखते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम पर्याप्त विश्राम करते हैं, तब हमें पता है शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही मन स्वस्थ रहे तो मन को हमें ऐसा ही भोजन देना, माना ऐसे विचार हम अपने मन को दे पाए। आज हम क्या विचार देते हैं अपने मन को? जो भी मीडिया है उसका प्रभाव हमारे मन पर होता है। आज के संसार समाचार कैसे होते हैं? इस दुनिया की सबसे बुरी खबर मीडिया की सबसे अच्छी खबर होती है। और हमारे दिन की शुरुआत ही कहां से हो रही है? जी संचार समाचार से ते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल, चाहे अखबार, और हम क्या अपने मन को भोजन दे रहे हैं सुबह सुबह। और ऐसे समाचार जब हम वो इनपुट दे रहे हैं, सारे दिन हम चर्चा भी क्या करेंगे आपस में मिलेंगे तो कि क्या हो रहा है, तो फिर मन हमारा कमजोर हो जाता है और फिर हम सोचते हैं बात तो कुछ हुई नहीं, क्यों मन में हम इरिटेट हो रहे हैं, क्यों हमें इतना जल्दी गुस्सा आ रहा है, क्यों मन में अशांति है, क्यों खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन को भोजन कैसा मिल रहा है। तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो कभी भी अपने दिन की शुरुआत संसार समाचार से नहीं करते थे। ये भाव नहीं कि संसार समाचार हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई डे। हमारे दिन की शुरुआत शक्तिशाली विचारों से, शुद्ध विचारों से होनी चाहिए। और जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या लोग जो भी हैं भक्ति पूजा पाठ करते हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन को मिलती है और मन पावरफुल हो जाता है। अब ये कंडीशनिंग करना है, जैसे ये अगर हॉल एयर कंडीशन है तो बाहर कितनी भी गर्मी है यहाँ हमें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि क्योंकि ये एयर कंडीशन है। ऐसे ही मन शक्तिशाली है तो फिर बाहर के व्यक्ति परिस्थिति कैसे भी हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, हम इतना जल्दी डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी हम स्टेबल रहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को हम बनाए रख पाएंगे, क्योंकि वो इनर पावर हमारे अंदर है। तो योग हमारे लिए ये कार्य करता है, ये सकारात्मक चिंतन करने की कला है। फिर दूसरी जो आत्मा की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति, जैसे कहा परखने की, निर्णय करने की, विश्लेषण करने की शक्ति है। तो कई बार हम बुरा सोच लेते हैं लेकिन बुरा करते नहीं हैं, क्योंकि बुद्धि विवेक अपना काम शुरू करता है, हम उसको विवेक से विश्लेषण करते हैं, ये सही है गलत है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इसका भविष्य परिणाम क्या होगा, और अगर लगता है ठीक नहीं होगा तो हम अपने विचारों की दिशा फिर बदलते हैं। तो अगर विवेक शक्तिशाली है तो व्यक्ति बुरा सोच लेगा लेकिन बुरा कभी करेगा नहीं अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर मन हावी हो गया तो व्यक्ति बुरा कर सकता है, और इसीलिए दुनिया में अपराध होते हैं। ऐसे नहीं उनको मालूम नहीं होता अपने विवेक से गलत क्या है सही क्या है, लेकिन मन हावी हो जाता है विवेक के ऊपर। व्यक्ति कभी भी कोई नया कार्य अपने जीवन में शुरू करता है, मन और बुद्धि के बीच में अंतर्द्वंद होता है। मन एक वकील की तरह है और बुद्धि जज की तरह है। तो वकील क्या करता है, तर्क कुतर्क जैसे कहते हैं ना, कि वो अपना अपना पक्ष रखता है, और जब वकील बोलना बंद करते हैं तब जाकर के जज अपना निर्णय देता है। तो यहाँ भी जब तक मन शांत नहीं होता तब तक बुद्धि से हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्यसन लेता पहली बार, अब पहली बार माना कोई शराब लेता है या सिगरेट पीता है, तो पता है विवेक से समझ तो है ना ये गलत है। ज्यादातर दोस्तों के संग में या पार्टी में ऐसे ही ऑफर किया जाता है तो तुरंत वो नहीं ले पाता, क्योंकि मालूम है कि ये गलत आदत है, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, और एक बार अगर लत लग गई तो पैसा भी बर्बाद होता है। लेकिन मन क्या कहेगा, ये विवेक से समझ है, मन क्या कहेगा, अभी पार्टी में आए हैं, दोस्तों के साथ हैं, आज ले लेते हैं, एक बार में थोड़ी हेल्थ खराब हो जाती है ना, मतलब मन अपनी बात कहता है। अब कौन शक्तिशाली है? अगर विवेक शक्तिशाली है तो कितना भी दोस्तों का दबाव है, कितना भी माहौल है, व्यक्ति वो काम नहीं करेगा, नहीं करना है माना नहीं करना है। लेकिन अगर मन हावी हो जाता है तो कितनी भी समझ है कि ये गलत है, व्यक्ति वो काम कर लेगा, और एक बार दो बार तीन बार कर लिया फिर आपका विवेक बिल्कुल विवेक शांत हो जाता है, अब व्यक्ति की वो गलत आदत माना कोई भी सही आदत हो या गलत आदत हो, वो इस तरह से पड़ती है कि कौन हावी होता है ना, विवेक शक्तिशाली है या मन शक्तिशाली है। फिर विवेक को हम जागृत कर सकते हैं, खासकर जब हम आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में, क्योंकि ज्ञान से ही विवेक जागृत होता है, तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य होती है और हम अधिक संयमित जीवन जी सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो भी आध्यात्मिक होते हैं वो अपने मन पर बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं, और जो कर्म हम बार बार कर लेते हैं निर्णय करने के बाद, वही हमारी आदत यानी संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों के अनुसार ही किसी को हम महात्मा कहते हैं, किसी को पुण्य आत्मा कहते हैं, किसी को देवात्मा कहते हैं। हम पाप शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर नहीं कहते। कर्म तो शरीर के द्वारा होते हैं, लेकिन आत्मा को कहा जाता है क्योंकि कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, तो इसीलिए उसे महात्मा, देवात्मा या पुण्यात्मा हम टाइटल देते हैं। तो दो प्रकार के संस्कार आत्मा के अंदर हैं। एक है आत्मा के निजी संस्कार जिनसे आत्मा बनी है, मूल संस्कार हैं, वो सभी के समान हैं। जैसे हम कहेंगे ये शरीर पंच तत्वों का बना है, तो सभी का शरीर ही पंच तत्वों से बना हुआ है, तो इस शरीर को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, पंच तत्व ही चाहिए, वही उसको सस्टेन करते हैं। अभी इस शरीर में 70% वाटर है, तो हमें प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं। अगर कोई मुझे ऑयल दे दे या पेट्रोल दे दे, ये भी लिक्विड है आप पी लो, तो वो क्या होगा, हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा। तो हमें पानी ही चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में पानी ही है। हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने में क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीथ कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो क्या होगा, दम घुट जाएगा, व्यक्ति कुछ मिनट में ही मर सकता है। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारे शरीर की बनावट है। ऐसे ही आत्मा में सात गुण हैं जिनसे वो बनी है, वो है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, ये सात आत्मा के निजी गुण हैं और हमें ये चाहिए। हम जीवन में जो भी प्रयास कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, हम दोस्त बनाते हैं, परिवार में रहते हैं, सब साधन जुटाते हैं, क्या चाहिए, अल्टीमेट एम क्या है, क्या चाहते हैं, हमें सुख मिले। इन सब से क्या मिलता है, हमको सुख मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा जीवन में हम सुखी ही रहना चाहते हैं, शांति ही चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद माना खुशी होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, इसके विपरीत होता है तो फिर वो चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक क्रिश्चियन कहेगा कि मुझे सुख नहीं चाहिए, या मुस्लिम कहेगा कि मुझे सुख शांति नहीं चाहिए, सभी को क्या चाहिए। और हम कहते हैं सभी धर्म यही सिखाते हैं क्योंकि ये आत्मा का धर्म है। सभी धर्म कहते हैं आपस में एक दो को सुख दो, किसी को दुख मत दो, प्रेम से रहो, शांति सिखाते हैं। तो वो आत्मा का धर्म क्योंकि ये आत्मा का निजी स्वभाव है। आज कोई हमसे प्रेम से व्यवहार करता है तो हमें पसंद आता है, कोई हमसे नफरत करता है, हमारा अपमान करता है, क्रोध करता है, वो व्यक्ति हमें पसंद आता है। चलो मजबूरी है तो हम चलाएंगे, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो हम दोबारा उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। दुनिया में हम देखते हैं अगर प्रेम नहीं मिलता है ना, बच्चों को भी देखते हैं कई बार, माँ बाप बहुत बिजी रहते हैं, सब सुख तो दे देते हैं, माना भौतिक सुख तो दे देते हैं, लेकिन अपना वो टाइम प्रेम बच्चों को नहीं दे पा रहे, तो वो बच्चे क्या करते हैं, दूसरी जगह प्रेम ढूंढने लगते हैं। वो कहते हैं ये सब धन नहीं चाहिए आपका, हमें क्या चाहिए, तो प्रेम आत्मा का स्वभाव है, वो प्रेम ही चाहती है। फिर हमें सुख चाहिए, आज सुख में है तो जीवन सहज लगती है, और दुख के चार दिन भी भारी लगते हैं। दुख आते ही हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हमारा ये दुख दूर हो जाए, और नहीं दुख दूर होता तो भगवान को कहने लगते हैं, हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है। फिर कई तो अपना जीवन खुद ही समाप्त कर देते हैं। आज कितने सुसाइड होते हैं दुनिया में, तो कौन सुसाइड करता है जो अपने जीवन से इतना दुखी हो गया। एक सुखी व्यक्ति तो सोचेगा मेरी आयु जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। तो सुख हमारा स्वभाव है, दुख में मनुष्य ज्यादा नहीं जी पाता है। ऐसे ही शांति चाहिए हमें, शांति के लिए हम प्रयास करते हैं। भले ये सुख शांति कोई बाहर से आने वाली चीजें नहीं है, मन की स्थिति है। तो हम शांति के लिए भले कहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, कहीं पहाड़ों पर जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, कोशिश करते हैं। अगर मन अशांत होता है तो किसी तरह से, और नहीं तो दवाइयां भी लेंगे डॉक्टर के पास जा करके कि हाँ कोई दवाई दे दो जो थोड़ा अच्छी नींद आ जाए, थोड़ा शांति मिले। तो किसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम? पर वो ऐसे ही है जैसे कहा जाता है मृग के लिए कि कस्तूरी कुंडली बसे, हाँ उसकी कुंडली में ही कस्तूरी है, पर उसकी खुशबू को वो कहाँ ढूंढ रहा है, पूरे जंगल में दौड़ रहा है। तो शांति तो हमारे मन की स्थिति, हमारे विचारों से मन शांत और अशांत होता है। अगर हमने अपने विचारों की दिशा बदल दी, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं इसीलिए मन अशांत हो रहा है। कहते हैं शांति हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। तो अगर हम अपने मन को शुद्ध विचार में, श्रेष्ठ विचार में ले आते हैं, तो वही विचार हमें शांति का अनुभव कराते हैं। और ऐसे ही हमें शक्ति चाहिए। हम भगवान को कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो कमजोरी तो नहीं मांग रहे ना। कमजोर होते ही हम उपाय करते हैं कि हमारी कमजोरी दूर हो जाए, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, जो भी स्तर है, हम अपनी कमजोरी को दूर करके शक्तिशाली ही रहना चाहते हैं। वो हमारा स्वभाव है। ऐसे ही पवित्रता हमारा स्वभाव है। पवित्रता माना सत्यता, ईमानदारी, है ना, हमारा मन अंदर बाहर साफ हो। अगर कोई व्यक्ति इसके विपरीत है, मानो कोई हेरा फेरी करता है, छल कपट करता है, धोखा करता है, ऐसे लोग हमें पसंद आते हैं, कहते मन का साफ नहीं है। तो भले ही हम उतने सच्चे नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन दूसरों में हमें क्या पसंद आता है, उनकी सच्चाई, ईमानदारी, वो हमें पसंद आती, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए कोई संत होते हैं, चरित्रवान होते हैं, उनके आगे हम झुक जाते हैं। लेकिन कोई चरित्रहीन है या छल कपट वाले हैं, उनसे हम दूर रहते हैं। तो ये आत्मा का स्वभाव प्यूरिटी है, ज्ञान, जिज्ञासा भाव, ये भी आत्मा का स्वभाव है। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं नया नया, क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने का स्वभाव है। तो इस तरह से ये सातों आत्मा के अपने निजी गुण हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो संस्कार हैं, वो कर्मों से बने हुए संस्कार, वो भी चार प्रकार से आत्मा में बनते हैं। एक होता है वातावरण का प्रभाव, परिवेश, परवरिश का प्रभाव। जिस वातावरण में रहते हैं तो परिवार में परवरिश मिलती है, उन संस्कारों का प्रभाव आत्मा पर होता है। फिर संग का प्रभाव होता है, इसीलिए कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है। व्यक्ति अच्छे संग में है तो बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है, और बुरे संग में अच्छा व्यक्ति भी कब बुरा हो जाता है कह नहीं सकते। तो इतिहास में ऐसे मिसाल हम देखते हैं, जैसे डाकू जैसे लोग भी जब एक संत के संबंध में आए तो उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। जैसे हम ऋषि वाल्मीकि के बारे में जानते हैं कि वो पहले डाकू रत्नागर थे, लेकिन जब वो संपर्क में आए एक साधु के, उनकी कुछ बातों ने ही उन्हें रियलाइजेशन करा दिया और उनका जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे डाकू अंगुलीमाल थे महात्मा बुद्ध के समय में, बहुत खूंखार डाकू थे। अंगुलीमाल नाम इसलिए था कि वो जिसकी हत्या करते थे उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहनते थे, तो अंगुलियों की माला, इसलिए अंगुलीमाल नाम था। लेकिन महात्मा बुद्ध के संपर्क में आते ही उनका जीवन बदल गया और वो खुद भी भिक्षु बन गए। तो संघ का प्रभाव, इसीलिए सत्संग कहते हैं कि अगर व्यक्ति सत्संग करता है तो वो उसके जीवन को प्रेरित करता है और जीवन में परिवर्तन आता है। फिर तीसरे संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों के, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती, तो आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके नया शरीर लेती है जब ये पुराना हो जाता है, जो गीता में भी कहा गया कि ये आत्मा के लिए शरीर वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा के लिए भी शरीर जब पुराना हो जाता है तो वो पूर्व जन्म में आती, पुनर्जन्म में आती है आत्मा। तो पुनर्जन्म में क्योंकि कर्मों का प्रभाव आत्मा पर होता है, इसीलिए वो नेक्स्ट बर्थ में भी प्रकट हो जाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत असाधारण प्रतिभा वाले होते हैं, कम आयु में ही वो बहुत उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, गायन कला में हो चाहे नृत्य कला में हो, यहाँ तक कि जीनियस होते हैं। 5 साल की आयु में कई बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ होती है। हम देखते हैं ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले एक 5 साल का बच्चा आया था जिसे जिसका नाम कोटिल्य था और उसे सब गूगल बॉय कहते थे। आप में उससे भी कईयों ने सुना होगा उसके बारे में। तो वो कोई भी उत्तर दे देता था, कहाँ से भी उसे कोई भी सवाल पूछ लो, आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी टाइम लगेगा लेकिन उसका उत्तर तुरंत हाजिर है। तो इतनी कम आयु में इतना जीनियस होना, ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। अब हम परिवारों में देखते हैं 2-3 बच्चे हैं, बाकी सब बातें समान होती हैं, वही घर है, वही परवरिश है, एक ही स्कूल में भी पढ़ते होंगे, माँ बाप तो वही, भोजन वही होता है, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग होगा। एक स्वभाव से बहुत स्टूडियस है, ओबीडियंट है, सिंसियर है, उसके लिए माँ बाप को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट, कितनी भी कोशिश कर लो उनको पढ़ना ही नहीं है, हाँ उनको मानना ही नहीं है। तो ये क्या है, ये पूर्व जन्मों के संस्कार जो आत्मा में 15 साल तक बहुत प्रबल होते हैं। आप कोशिश करेंगे थोड़ा समय दब जाएंगे लेकिन बाद में फिर वो वैसे के वैसे। माँ बाप की तो सभी बच्चों के लिए एक जैसी भावना होती है कि सभी का भविष्य अच्छा हो, लेकिन सभी बच्चे एक जैसा भविष्य बना लेते हैं, नहीं बना पाते क्योंकि पूर्व जन्मों की भी डेस्टिनी उनके साथ चलती है। तो कई बार कई ऐसे प्रश्न उठते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों या ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर होता है कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में, जो डेस्टिनी हम लेकर के आए हैं। तो ये भी प्रभाव आत्मा के होते हैं। और चौथा होता है जेनेटिक, जो जीन्स हमें मिलते हैं हमारे माँ बाप से, उनका प्रभाव भी हमारे संस्कारों पर होता है। तो कुल व्यक्तित्व हमारा इन सब से मिलकर बना होता है। हमारे जो अनादि संस्कार हैं, जो कहा जो निजी संस्कार हैं, वो कई बार ये एक्वायर्ड संस्कार, कर्मों से बने हुए संस्कारों से दब जाते हैं। इसीलिए कभी हम शांत होते हैं, कभी हम अशांत हो जाते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है और उससे हमारे संस्कार हम परिवर्तन कर पाते हैं। नॉर्मली संस्कार परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, असंभव नहीं है लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो आदतें जो बन जाती हैं वो बहुत पक्की होती हैं। लेकिन योग अभ्यास में जब ये रियलाइजेशन हमें होता है कि ये हमारे लिए परिवर्तन करना आवश्यक है और इस विधि से हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो संस्कार फिर हमारे कर्मों से बने हुए जो संस्कार हैं वो परिवर्तन करके हम अपने निजी संस्कारों को विकसित कर लेते हैं। सुख के संस्कार, शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, जो बताया आपको, आनंद खुशी के संस्कार, ये हमारे हम विकसित कर लेते हैं। आत्मा का स्थान शरीर में मस्तक के मध्य में, ये स्थान जिसे हम भ्रकुटी कहते हैं, भ्रकुटी में आत्मा निवास करती है। आत्मा एक ज्योति बिंदु चमकते हुए सितारे के समान है। अब सितारा तो आसमान में दिखाई देता है, लेकिन आत्मा रूपी सितारा हमें दिखाई नहीं देता है। आत्मा को हम अनुभव से जानते हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ अनुभव से जानते हैं। हवा है उसको हम अनुभव से जानते हैं, खुशबू को हम अनुभव से जानते हैं, तो जो हमें दिखाई नहीं। अब ध्वनि है, ये साउंड है, अब साउंड हमारे कानों तक पहुंच रही, दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन फिर भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है इन चीजों का। जैसे कहा, जो सूक्ष्म चीजें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। तो तरंगे हैं, लेकिन हम देख थोड़ी सकते हैं, साउंड वेव्स को हम देख तो नहीं सकते। तो ऐसे ही आत्मा भले हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। और ये स्थान इसलिए निश्चित है क्योंकि यहां से आत्मा पूरे शरीर की कर्मेंद्रियों को संचालित करती है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर का स्थान निश्चित होता है, अगर वो पीछे की सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करे तो कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ही ड्राइविंग के सारे साधन हैं और उससे ही वो उसको ऑपरेट कर पाएगा। ऐसे ही हमारी जो मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, आंख नाक कान मुख, और उससे भी अधिक मस्तिष्क, जो कंट्रोल रूम है आत्मा के लिए, जहां से पूरे शरीर का सारा सिस्टम, जो हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, वहां से आत्मा पूरे शरीर को सहज कंट्रोल कर सकती है। तो अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये स्थान दोनों के बीच में आत्मा रहती है। हम अगर अपने यहाँ हेड के ऊपर से एक लाइन खींचते हैं और एक यहाँ से लाइन अंदर खींचते हैं, तो वो जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु, उस बिंदु जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में आता है, वहां पर आत्मा का स्थान शरीर में है और वहां से ही वो मस्तिष्क से कनेक्ट रहती है आत्मा, और उसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ आता है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो हम कहेंगे कि ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर की तरह है या कंप्यूटर की तरह है, और आत्मा उसकी ऑपरेटर है या उसका सॉफ्टवेयर है। तो उसके द्वारा ही आत्मा जो है वो इस शरीर को संचालित करती है। तो मन और ब्रेन में फर्क है। मन जो है वो सॉफ्टवेयर है, मन विचार शक्ति, जो कहा आपको, कल्पना शक्ति है, लेकिन ब्रेन के द्वारा वो कार्य करता है। आत्मा हृदय में नहीं रहती है। कई सोचते हैं कि आत्मा हृदय में रहती है क्योंकि वो भावनाओं को हृदय से जोड़ते हैं, लेकिन हृदय तो ब्लड पंप करने का ऑर्गन है। हृदय ब्लड बनाता भी नहीं है और ब्लड को शुद्ध भी नहीं करता है, सिर्फ ब्लड को शरीर में पंप करता है। आज किसी को हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो उसको ऑपरेट करते हैं, उसकी बाईपास सर्जरी हो जाती है, कईयों का हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो क्या आत्मा की सर्जरी हो गई? या हार्ट चेंज कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करना माना चेंज कर देते हैं, तो क्या व्यक्ति बदल जाता है? तो व्यक्ति कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन आत्मा बदलती है तो बदल जाता है। किसी के अंदर ईविल सोल आ जाती है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? उस ईविल सोल जैसा हो जाता है, जो उसके ईविल संस्कार हैं वो वैसा बिहेव करने लगता है। तो इसीलिए हृदय में आत्मा निवास नहीं करती है। इसलिए जब हम गहरे विचार में होते हैं तो हमारा हाथ मस्तक पर जाता है, सीने पर नहीं जाता है। लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी भावनाओं के आवेग होते हैं उसका असर हार्ट पर सबसे पहले आता है। आप बहुत डर गए या कोई बात को लेकर बहुत टेंशन में आ गए तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाँ, तो लगता है कि कहाँ हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए उसको हृदय से जोड़ दिया, लेकिन आत्मा का स्थान यहाँ मस्तक के मध्य में है। और हम आत्माएं इस सृष्टि में कहाँ से आते हैं, ये भी कई बार एक प्रश्न होता है। कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये जग मुसाफिर खाना है। तो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, क्योंकि आत्मा तो भौतिक नहीं है, ये तो भौतिक जगत है। तो आत्मा इस भौतिक जगत की रहने वाली नहीं है। इस भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, इस कॉस्मोस में ग्रह उपग्रह सूर्य चांद तारे, विज्ञान की पहुंच भी कहाँ तक है, सूर्य चांद तारों तक भी अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचे, कोशिश कर रहे हैं हाँ कि हम सूर्य तक भी पहुंच जाएं। तो ये पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है, इतने सब ग्रह उपग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है, और इस पृथ्वी पर ही ये कर्म क्षेत्र है। माना हम कहेंगे कि ये जो जीवन है या जो भी ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा हम कहेंगे एक तरह से, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है वो इस पृथ्वी पर ही चलता है। और अन्य ग्रहों पर बहुत कोशिश किया लेकिन अभी तक कोई ऐसे जीवन के प्रमाण किसी भी स्थान पर नहीं मिले हैं। तो परमात्मा ने भी ये जो राजयोग सिखाया है उसके अनुसार इस पृथ्वी पर ही ये सृष्टि रूपी रंगमंच है जहां आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, और यहीं वो शरीर रूपी वस्त्र छोड़ती है, और उसका जो असली घर है, अभी ये बंद हो गया है हमारा लैपटॉप क्योंकि ये भी सब साधन है, तो नहीं तो चित्र में आपको दिखा दे कि वो जो लोक है, तीसरा लोक जिसे हम परम धाम कहते हैं, ब्रह्म लोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, वो परमात्मा का निवास स्थान है जहां आत्मा अपने मूल रूप में रहती है। शरीर इसी दुनिया में बनता है, प्रकृति के तत्वों से ही बनता है, और यहीं प्रकृति के तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा अपने सूक्ष्म मूल रूप में, जो कहा ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप में परम धाम में रहती है, उसे ही सोल वर्ल्ड कहते हैं, जो ब्रह्म महातत्व है, छठा तत्व है, अखंड ज्योतिर्मय तत्व है, जहां सुनहरी लाल प्रकाश है, वहां पर सूर्य चांद तारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। ये स्वप्रकाशित तत्व सदा प्रकाशित तत्व है और ये सूर्यास्त के रंग का है। तो यहाँ पर इस ब्रह्म तत्व में आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए इसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, और ये मुक्ति धाम है क्योंकि यहाँ आत्मा मुक्त है, मोक्ष की अवस्था में है। यहाँ पर कर्मों के बंधन से, देह के बंधन से, देह के संबंधों के बंधन से आत्मा पूरी तरह से मुक्त है, इसीलिए ये मुक्ति धाम कहलाता है। ये निर्वाण धाम है क्योंकि ये वाणी से भी परे है, और ये शांति धाम है क्योंकि ये शांति का स्थान है। तो इसीलिए आत्माएं सब परम धाम की रहने वाली हैं, और उसके बीच में एक लोक है, सूक्ष्म लोक। आत्मा को ये हड्डी मांस का जो शरीर है, इसके अलावा एक सूक्ष्म काया भी होती है जो प्रकाश का शरीर होता है। तो जब भी आत्मा ये स्थूल शरीर को छोड़ती है तो वो प्रकाश के काया के साथ बाहर आती है, वो भी दिखाई नहीं देता, और वो तब तक उस सूक्ष्म काया में रहती है जब तक कि उसे पुनर्जन्म नहीं मिल जाता। तो वो सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर के लिए वो लोक है जो आत्मा का वेटिंग पीरियड। तो उसमें अगर कोई अच्छी आत्मा है, गुड सोल है, तो उसे हम एंजल कहते हैं, और अगर वो इविल सोल है तो उसे हम घोस्ट कहते हैं। माना उसकी फिर लाइट ब्लैक शेडो वाली होती है, और जो गुड सोल्स होती हैं उनकी जो लाइट होती है वो वाइट लाइट होती है, तो वो एंजल कहलाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर का लोक सूक्ष्म लोक कहलाता है, और ये स्थूल लोक है जो भौतिक जगत है, जिसके लिए शेक्सपियर ने कहा दिस वर्ल्ड इज ए बिग ड्रामा। एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रोल ओवर हियर. तो इस वर्ल्ड ड्रामा के हम सब एक्टर्स हैं, हम सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है और हम सब अपनी ये शरीर रूपी ड्रेस पहन करके अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं. और जब रोल पूरा हो जाता है तब क्या होता है, नाटक के एक्टर अपने घर जाते हैं, अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं, अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ जाते हैं. तो ऐसे ही ये शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर आत्मा जब रोल पूरा होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है और अपने घर परम धाम चली जाती है. तो आत्मा का असली घर परम धाम है. अब आत्मा के कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं. आज का समय प्रमाण का युग है, हम प्रमाण से ही मानते हैं, क्योंकि आत्मा दिखाई तो नहीं देती, इसलिए कई बार संदेह हो सकता है कि आत्मा है या नहीं है. तो प्रमाण क्या मिलते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस. ऐसे बहुत अध्ययन किया गया इसके ऊपर और बुक्स भी लिखी हुई हैं. एक बुक है लाइफ आफ्टर लाइफ, डॉक्टर रेमंड मूडी ने लिखी है, जो अमेरिकन फिजिशियन थे और वो कैजुअल्टी में उनकी ड्यूटी थी. कैजुअल्टी माना जहां पर इमरजेंसी वाले पेशेंट आते हैं और वो जीने मरने के बीच में ही होते हैं, इमरजेंसी में वही लाए जाते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं. तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, या हम कहेंगे मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस हो चुकी है, ऐसे साधन है कि मरते हुए को भी जीवित कर लिया जाता है. तो उन्होंने देखा कि ऐसे मरीज जो उनके अनुसार क्लिनिकली डेड हो गए लेकिन विद इन मिनट्स उन्हें रिवाइव कर लिया गया, तो वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं. माना उस बीच में जो वो ट्रांजिशन पीरियड था उनका एक्सपीरियंस बड़ा वंडरफुल वो लोग सुनाते हैं. तो वो ही एक्सपीरियंस को लेकर के उन्होंने वो बुक लिखी जो कहा लाइफ आफ्टर लाइफ. तो एक उदाहरण हम बताते हैं, एक्चुअली मेरी पर्सनल लाइफ, क्योंकि बेसिकली मैं भी मेडिकल डॉक्टर रही हूं, तो मैं 3-4 ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूं जिन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल महसूस किया कि वो इस शरीर से अलग हो गए और अपने आप को देख रहे हैं कि शरीर नीचे अलग पड़ा है और हम इस शरीर से अलग हैं. और उसमें 2 तो डॉक्टर ही हैं जिन्होंने खुद ये अनुभव किया. तो मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो उस बुक का है जो लाइफ आफ्टर लाइफ में बता रही हूँ, क्योंकि वो अमेरिका में थे. तो एक बिजनेसमैन वो कैलिफोर्निया से बॉस्टन आया बिजनेस के काम से, और वहां बॉस्टन में जो उसका बिजनेस था उसमें उसको लॉस हुआ, काफी ज्यादा लॉस हुआ. तो स्ट्रेस में आ गया, स्ट्रेस में आने के कारण उसको हार्ट अटैक आया. अब वो अटैक इतना मासिव था कि जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया उसको, तब तक पल्स नहीं, बीपी नहीं, और अनफॉर्चुनेटली सब जूनियर डॉक्टर थे तो कोई उसको रिवाइव नहीं कर पाया. और उन्होंने कहा कि ये तो उसकी डेथ हो गई, अब इसको हमें मॉर्चरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलिफोर्निया का था, जब तक उसके रिलेटिव आए तब तक. अब ये जो बिजनेसमैन था वो यंग था, मरना नहीं चाहता था, और वो ये सब देख रहा था, क्योंकि जैसे कहा कि ऐसे लोगों के ऐसे अनुभव होते हैं. उसने देखा कि डॉक्टर ये दवाइयां दे रहे हैं, ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये मेरी बॉडी पड़ी हुई है, और इन्होंने तो मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि मैं मर गया, मैं तो यहीं हूं. तो उसने देखा उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो वो कहीं भी जा सकता है. तो वो पहुंच गया कैलिफोर्निया में अपनी पत्नी को बताने के लिए, तो देखा पत्नी तो होटल में बैठी हुई है और उसकी माँ बीमार है, उसके बारे में सोच रही है. तो वो तो उसको समझ ही नहीं पा रही, वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन वो तो समझ ही नहीं रही. फिर वो अपने दोस्त के पास गया, वो दोस्त भी नहीं समझ रहा है. फिर वो लौट करके तुरंत आया तो देखा कि बॉडी मॉर्चरी में ले जा रहे हैं. अब उसको लगा ये तो मॉर्चरी में डाल देंगे, तो कोशिश करके उसने जंप लगा दिया अपने शरीर में. तो आंखें हिली, पलक झपकी, क्योंकि आत्मा यहां है तो सबसे नजदीक तो आंखें ही हैं. तो आंखें हिली तो वो वार्ड बॉय ने देखा, अरे ये तो जिंदा है, आंखें खोल रहा है. वो लेके आया वापस उसको, डॉक्टर ये तो जिंदा है. फिर डॉक्टर ने कोशिश की, तो इस बार वो लकी रहा कि उसको उन्होंने रिवाइव कर लिया, लेकिन लगभग हफ्ता 10 दिन तो वो उसको बोलने की बिल्कुल मना थी, और तब तक उसके रिलेटिव भी आ गए, उसकी वाइफ, उसके फ्रेंड वो पहुंच गए थे वहां पर। अब जब वो बोलने लगा तो उसने सबसे पहले यही सुनाना शुरू किया कि जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने क्या अनुभव किया। तो डॉक्टरों ने देखा ये वो सब बातें बता रहा है, ये तो बिजनेसमैन है, इसको मेडिकल का क्या नॉलेज है, ये सारी वो बातें बता रहा है जो हम दवाइयां दे रहे थे ना, और उनके नाम ले रहे थे, हम जो बोल रहे थे इसको सब पता है, जबकि हमारे हिसाब से तो वो बिल्कुल मर चुका है। फिर पत्नी की बात उसने कही, वो माँ के बारे में सोच रही उस टाइम होटल में बैठी, उसने कहा मैं होटल में थी और माँ के बारे में ही सोच रही थी, तो मेरा माना थॉट भी मालूम है कि मेरा थॉट क्या चल रहा है। फिर वही दोस्त भी, उसने भी स्वीकार किया कि जो कह रहा है वो सही है, तो ये आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है जो ऐसी घटनाएं, हालांकि कॉमन नहीं है लेकिन घटती रहती हैं समय प्रति समय। और जैसे कहा पूर्व जन्म की घटनाएं सामने आती हैं, ये तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो कुछ समय के लिए आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है, लेकिन जो पुनर्जन्म की घटनाएं, वो भी पैरासाइकोलॉजी ब्रांच है जो उस पर स्टडी करते हैं, ये भी कॉमन नहीं है, लेकिन कोई कोई बच्चे जो हैं वो अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। अब पूर्व जन्म के बारे में कौन बता सकता है, ये जो शरीर है मानो केवल शरीर ही है, तो शरीर तो जला दिया या दफना दिया, अभी नए शरीर में तो नया ब्रेन है, वो नए ब्रेन में पूर्व जन्म की स्मृति कहाँ से आई। और देखने में आता है जब उसको फॉलोअप करते हैं जो पूर्व जन्म की बातें बताते हैं, तो वो 70-80% सही होते हैं वो जो भी बता रहे होते हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऐसी कई घटनाओं को जानती हूं, लेकिन समय अनुसार हम विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन ये घटनाएं जब होती हैं तो वो जब बिल्कुल यही मेरा परिवार, ये मेरा गांव, हम यहाँ रहते थे, और वो देखने में आता है कि हाँ वो सब सही है, इतने साल पहले उस व्यक्ति ने वहाँ शरीर छोड़ा, तो वो सब सही बता रहा होता है, नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बच्चे क्या है, क्या करते थे, वो सब तो कौन बता रहा है। तो जैसे कहा नया ब्रेन में तो वो स्मृति नहीं हो सकती, जरूर आत्मा में ही वो पूर्व जन्म का रिकॉर्ड है और वो उस नए ब्रेन को यूज करके अपना पूर्व जन्म बता रही है। और वैसे हम भूल जाते हैं, ये हमारे लिए वरदान है, अगर हमें अपना पूर्व जन्म सबको याद रहे तो क्या स्थिति होगी, हम समझ सकते हैं कितनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और इस जन्म की भी बातें हम याद नहीं रख पाते, 10 दिन पहले हमने क्या खाया था हमें याद होता है क्या? हाँ, तो इसीलिए जितना दिमाग हमारा हल्का रहे, जितना हम भूलते हैं, बीती कोई विशेष विशेष घटनाएं ही हम याद रखते हैं, ज्यादातर हम भूलते जाते हैं जो हमारा पीछे होता जाता है। तो इसीलिए ये भगवान की तरफ से ये हमें वरदान है कि हम सब पूर्व जन्म या पीछे की बातों को भूलते हैं, और नहीं भूलते तो कहते हैं भूल जाओ, क्योंकि नहीं भूलेंगे तो क्या होने वाला है, इतनी स्मृतियों का बोझ लेकर के हम नहीं चल सकते अपने जीवन में। और तीसरा जो है हिप्नोटिक रिग्रेशन, ये भी एक विधि है, आज साइकेट्रिस्ट इसे यूज करते हैं, खासकर विदेशों में तो इसे बहुत यूज करते हैं मानसिक रोगों के इलाज में, क्योंकि कई हमारे जीवन की जो वर्तमान समय में घटनाएं या जो भी बीमारियां हैं उनका संबंध पूर्व जन्म से होता है। तो कईयों को बहुत अनएक्सप्लेन फियर होते हैं, यानी आग से बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डर लगता है, या हाइट से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, ऐसे कोई कोई होते हैं। और उसका कारण होता है कि पूर्व जन्म में उनकी मृत्यु उसकी वजह से हुई, जिसकी डूबकर मृत्यु हुई उसको इस जन्म में पानी से बहुत डर लगता है, जिसकी जलकर हो गई उसको आग से बहुत डर लगता है, जिसकी कोई ऊंचाई से गिरकर हो गई उसको हाइट से डर लगता है, माना ऐसे। तो वो उसको इलाज देने के लिए रिग्रेशन में ले जाते हैं, पूर्व स्मृतियों में ले जाते हैं, और फिर उसकी काउंसलिंग करते हैं और इस तरह से उसका इलाज होता है। तो ये देखने में आता है कई बार रिग्रेशन में वो पूर्व जन्म तक चले गए और भाषा ही दूसरी बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में वो कोई दूसरे देश में था तो वो दूसरी भाषा बोलते थे, इस जन्म में उसको उस भाषा का ABCD भी नहीं आता है। मानो वो पूर्व जन्म में इंग्लैंड में था, इस समय स्पेन में है, तो वो पूर्व जन्म की इंग्लिश भाषा बोलने लगा, इस समय उसको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती। तो ऐसे ऐसे मिसाल एग्जाम्पल्स जो हैं वो सामने आते हैं, और इसके ऊपर भी बहुत बुक्स लिखी हुई हैं। डॉक्टर ब्रायन विस, ये भी साइकेट्रिस्ट हैं, अभी एट प्रेजेंट भी हैं, जिन्होंने सेम सोल सेम बॉडी कई बुक्स लिखी हैं, उन्होंने 3-4 बुक्स लिखी हुई हैं इसके ऊपर ही, हिप्नोटिक रिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो इसको बहुत यूज करते हैं। और एट प्रेजेंट भी मियामी में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है साइकेट्रिस्ट में। तो ये सब घटनाएं ये साबित करती हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, भले हम आत्मा को देखते नहीं लेकिन हम अनुभव करते हैं, यहां तक साक्षात्कार में आत्मा को देख भी सकते हैं। जब परमात्मा हमें वो दिव्य दृष्टि देते हैं तो उससे आत्मा को देखा भी जा सकता है। तो आत्मा का ज्ञान भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया नहीं है, हमारे यहाँ तो गीता में प्रथम अध्याय ही पूरा आत्मा के ज्ञान पर है, लेकिन हम उसे अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। आत्मा शब्द सिर्फ किसी की मृत्यु होगी तभी हम कहते हैं या बात करते हैं, या कोई भूत प्रेत की बातें होती हैं तभी हम आत्मा कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त करने वाला है। पहली बात तो इससे हमें समदृष्टि आती है, जैसे कहा कि दैहिक स्तर पर जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो अनेक भेदभाव हैं, तो हम भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं जब हम देह भान में यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। सोल कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस है, तो जो भी धर्म जाति भाषा रंग लिंग ये सब भेद हैं, है ना, जैसे हम देखते हैं धर्म के नाम पर हम क्रिश्चियन हैं मुस्लिम हैं हिंदू हैं या जाति है ब्राह्मण है राजपूत है या फिर जैसे कहेंगे मराठी है गुजराती है बंगाली है या अमेरिकन है भारतीय है जापानी है, ये सब, या काला है गोरा है स्त्री है पुरुष है, ये सब दैहिक स्तर पर भेदभाव है। और आज इसके कारण कितनी समस्याएं हैं, कितने लड़ाई झगड़े विषमताएं समाज में हैं। तो जब हम आत्मिक स्तर पर सोल कॉन्शियसनेस लेवल पर हम अपना जीवन व्यवहार करते हैं, कर्म में आते हैं संबंध में आते हैं, तो ये सब समस्याओं का हल हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं लिंग नहीं जाति नहीं भाषा नहीं, क्योंकि आत्मा का जैसे कहा आत्मा तो अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप है प्रेम स्वरूप है सुख स्वरूप है। और जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं तो हमारी ये गुण विकसित होते हैं, ये जो निजी गुण है ये हमारे विकसित होने लगते हैं, जो हम अपने जीवन में चाहते भी हैं कि हम वो सुख का अनुभव करें शांति का अनुभव करें। और मृत्यु का भय समाप्त होता है क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, ये तो देह की मृत्यु होती है, आत्मा तो सदा ही है, जो कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु तो सिर्फ परिवर्तन है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में वो परिवर्तन होता है, तो इसीलिए वो दुख जो मृत्यु का दुख लोग अनुभव करते हैं या भय अनुभव करते हैं उससे भी हम मुक्त होने लगते हैं जब हम आत्मज्ञान के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये स्थिरता जैसे कहा है ना, इनर स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ती है जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि जीवन के सत्यों को हम समझ जाते हैं। केवल ये वर्तमान जो हमारा भौतिक शरीर है यही सब कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी श्रेष्ठ हमारा अस्तित्व जो है वो आत्मिक अस्तित्व है। तो जब हम सृष्टि को उस नजर से देखते हैं कि हम सब आत्माएं यहाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र है लेकिन यही सब कुछ नहीं है, तो बहुत सारी बातों के कारण जो हमारा मन अशांत होता है हलचल में आता है परेशान होता है उनसे हम न्यारे होने लगते हैं, और हम साक्षी स्थिति में एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर हम इस संसार को देख पाते हैं, तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। तो अभी जो हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर कुछ मिनट के लिए हम आत्म चिंतन करेंगे, जो राजयोग अभ्यास का फर्स्ट स्टेप है, सोल कॉन्शियसनेस या आत्म चिंतन करना। तो आप सभी सीधे होकर बैठेंगे, आंखों को आप स्वाभाविक रूप से खुला रख सकते हैं या चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खुला रखें, क्योंकि आंख बंद करने से हो सकता है आपको नींद आ जाए। अपने मन को आसपास के व्यक्तियों से, आवाजों से न्यारा कर लें, और जैसा चिंतन मैं आपको दूंगी आप मन ही मन उसे स्मरण करते हुए अनुभव करने की कोशिश करेंगे। मन को चिंतन दे, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मस्तक के मध्य में मैं चमकते हुए सितारे के समान प्रकाश पुंज हूं, मैं अचर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं, शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है, शांति ही शक्ति है, अपने कर्मों में, अपने विचारों में शांति होने पर मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है, मेरी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से पार परम धाम है, ये सृष्टि एक रंगमंच की तरह है, जहां मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर अपना रोल प्ले कर रही हूं। मेरा असली घर परम धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, संपूर्ण शांति है, ये दुनिया की आवाजों से परे संपूर्ण शांति का लोक है, यहां मैं आत्मा अपने ज्योति स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ और मुक्ति की अवस्था में हूँ। सर्व कर्मों से, अपनी देह के बंधन से भी मुक्त, बहुत ही न्यारापन अनुभव हो रहा है, एक हल्कापन, मुक्त स्थिति का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। ये मेरे पिता परमात्मा का भी धाम है, परम धाम की शांति और प्रकाश का अनुभव स्वयं में लेकर मैं पुनः स्वयं को इस जगत में अपनी भ्रकुटी के मध्य अनुभव कर रही हूँ। आज सारा दिन मैं ये अभ्यास करूंगी, मैं आत्मा हूं और अपने स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं और अन्य जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उन्हें भी मैं आत्मिक दृष्टि से देखूंगी। ओम शांति शांति शांति।